ओम शांति। इकतीस दिसंबर 1966 प्रातः क्लास।
ओम शांति। इट इज द मॉर्निंग क्लास ऑफ 31 दिसंबर 1966।
दो पेज के मध्यांत में बात चल रही थी।
द डिस्कोर्स दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ मिडल ऑफ सेकेंड पेज वॉज।
आजकल तो सब लड़ाई सीखते हैं।
Nowadays everyone learns to fight।
थोड़े समय के बाद तुम देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी हथियार मिलेंगे।
After some time you will see that even little children will also possess weapons।
और सबको छुरी आज मारना सिखावेंगे।
And everyone will be taught to use knife etc।
क्योंकि ये सीखने में कोई टाइम थोड़ा ही लगता है।
Because little indeed will it take time to learn this।
अब ये हिंसा आदि तुमको तो कुछ सीखना नहीं है।
Now you should not learn all these violent things।
तुमको हिंसा करनी ही नहीं है।
You should not at all practice violence।
फिर भी अपने बचाव के लिए बाप को याद करते रहो।
Even then, to save yourself, keep remembering the father।
क्या?
What?
हमारा रक्षा कवच कौन सा होगा?
What would be our protecting shield?
दुनिया हिंसक बनेगी, आक्रामक बनेगी, मारामारी करेगी।
World will become violent, attacking, will practice beating and killing।
लेकिन हमको कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, बात की याद में रहना है।
But we should not practice any kind of violence, we should be in the remembrance of father।
क्योंकि ये शरीर वैल्यूएबल है।
बिकॉज दिस बॉडी इज वैल्यूएबल।
क्यों वैल्यूएबल है?
वाई इज इट वैल्यूएबल?
और जो 84 जन्मों में शरीर लिए वो वैल्यूएबल नहीं है क्या?
द बॉडीज दैट वर टेकन इन द 84 बर्थ्स आर दे नॉट वैल्यूएबल?
है? और सत्युग में जो जन्म लिए वो तो देवताओं के जन्म थे, वो वैल्यूएबल नहीं है क्या?
The births taken in Satyug, that is golden age, were the divine births. Are they not valuable?
Treta mein Kshatriya gharane mein janm liye, wo bhi to valuable the.
One took birth in the warrior family in Treta, that is silver age. They were also valuable, isn't it?
Chalo dwapar mein vaishya ban gaye, Kaliyug mein shudra ban gaye.
Let it be that we had become vaishya in dwapar, shudra in Kaliyug.
वैल्यू खत्म हो गई।
द वैल्यू हैज वैनिश्ड।
अभी वैल्यूएबल शरीर क्यों है? ये तो अंतिम जन्म है।
वाई इज इट अ वैल्यूएबल बॉडी एस्पेशली नाउ? दिस इज द लास्ट बर्थ।
क्योंकि?
बिकॉज
यही शरीर गाया हुआ है शास्त्रों में।
दिस बॉडी इज ओनली प्रेस्ड इन स्क्रिप्चर्स और शास्त्रास।
नरतन मनुष्यतन।
नर्तन दैट इज द ह्यूमन बॉडी।
शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक जन्म मनुष्य जन्म का मिलता है।
इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट आफ्टर वॉन्डरिंग थ्रू द 84 लाख स्पीशीज दिस वन ह्यूमन बर्थ इज अचीव्ड।
वो तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है।
दैट हैज बीन रिटन बाई देम जस्ट लाइक दैट।
ऐसे थोड़ा ही होता है।
लिटिल इंडीड डज इट हैपन सो
कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है।
दैट द ह्यूमन सोल टेक्स 84 लाख बर्थ्स।
जन्म तो सिर्फ 84 लेती है।
इट विल टेक ओनली 84 बर्थ्स।
84 का ही चक्र गाया हुआ है।
ओनली 84 साइकल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ हैव बीन प्रेस्ड।
उसको 84 लाख योनियों में डाल दिया है।
इट हैज बीन पुट डाउन इन राइटिंग एज 84 लाख स्पीशीज।
वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती।
एक्चुअली अ ह्यूमन सोल डज नॉट टेक 84 लाख बर्थ्स।
हाँ मनुष्य कुत्ते बिल्ले जैसे काम करने लग पड़ते हैं।
यस ह्यूमन स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स।
इसलिए कहती है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है।
दैट इज वाई इट हैज बीन सेड दैट ह्यूमन सोल टेक्स 84 लाख बर्थ्स।
कीड़े मकोड़ों जैसे काम करने लग पड़ती है।
इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक द इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स।
बाकी मनुष्य जन्म जो है वो मनु की औलाद को कहा जाता है।
अदरवाइज द ह्यूमन बर्थ is said to be of the child of Manu.
Manu कहा जाता है ब्रह्मा को.
Brahma is called as Manu.
क्योंकि शिव की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार.
Because Shiv has three powers, man that is mind, buddhi that is intellect, and sanskars that is resolves.
ये तीन कार्य करता है शिव के.
These are the three workers of Shiv.
वो शिव ज्योति बिंदु तीन कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना सारा कार्य सृष्टि के निर्माण का, पालना का, विनाश का करता है.
That Shiv Jyoti Bindu, the point of light Shiv, does all his work of the world renovation, sustenance and destruction through the three workers.
Unme pehli murti pratyaksh hoti hai Manu, man, arthat Brahma, sankalpa shakti.
Of whom the first form that is revealed is Manu, that is mind, which means Brahma, the power of thought.
तो मनु की औलाद जो पैदा हुए उनको कहा गया है मनुष्य.
Therefore, the children born out of Manu are called as Manushya, that is man.
जैसे ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई.
Just like the child of Brahma is called as Brahman, one letter increased.
Follower अथवा बच्चे के अर्थ में.
In the meaning of the follower or a child.
विष्णु की औलाद को कहा जाता है वैष्णव.
The child of Vishnu is called as Vaishnav.
ये विष्णु के follower.
Or the follower of Vishnu.
एक मात्रा बढ़ गई.
One letter increased.
ऐसे ही.
In the same manner.
शिव के जो फॉलोअर हुए उनको कहा जाता है शैव, शैव संप्रदाय.
The followers of Shiv are called as शैव, the शैव संप्रदाय, that is the शैव community.
ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य कहे गए.
In the same manner, the child of Manu is called to be मनुष्य, which means human beings.
मनु ब्रह्मा को कहा जाता है.
Brahma is called as Manu.
ब्रह्मा ही संकल्प शक्ति है शिव की.
The power of thought of Shiv is Brahma.
कहते हैं.
It is said that.
ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई.
The world was created by the thought of Brahma.
तो अभी वो सृष्टि रची जा रही है.
So that world is being created now.
इसीलिए.
That is why.
ये फाउंडेशन की बेला है.
This is the time of foundation.
जैसे मकान का फाउंडेशन डाला जाता है.
Just like while laying the foundation for a house.
तो ध्यान दिया जाता है कि कूप पक्का रहे.
Care is taken to make it very strong.
मजबूत फाउंडेशन जितना होगा मकान का, उतनी ही उसके ऊपर कई मंजिल की बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है.
The number of story that can be built depends upon the strength of the foundation laid.
ये मनुष्य जीवन की बिल्डिंग कितने जन्मों की है?
Of how many births is this building of a human being?
84 जन्मों की.
It is of 84 births.
84 मंजिले हैं इसमें.
It possesses 84 story.
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे, तीसरे, चौथे, 84 जन्म ले.
A soul takes 84 births, leaving one body after another.
84 मंजिल तय करती है ज्यादा से ज्यादा.
At the maximum, it decides 84 births.
और इस अंतिम जन्म में उसका नाम पड़ता है मनुष्य.
And in this last birth, it is named as मनुष्य, that is human being.
तो बहुत वैल्यूएबल हुआ.
So it is very valuable.
अगर मकान की नींव हिल जाए या कच्ची रह जाए तो मकान धराशायी हो जाएगा.
If the foundation of a house shakes or remains weak, then the house will collapse.
ऐसे ही ये 84 जन्मों की फाउंडेशन बेला है.
In the same manner, this is the hour of foundation of 84 births.
हर युग के हर जन्म में भगवान इस सृष्टि पर नहीं आता.
God will not come in the world in every birth of every age.
ये तो शास्त्रों में मनुष्यों ने लिख दिया है.
It is written so by human beings in shastras or scriptures.
मनुष्यों की बुद्धि तो विकारी होती है.
The human intellect is impure.
विकारी बुद्धि से जो कुछ भी लिखेंगे उससे अपना भी नुकसान करते आए और मनुष्य सृष्टि का भी नुकसान.
They have degraded themselves as well as the human race on the basis of whatever they have written with impure intellect. Now the Godfather comes and says
कि मैं सच्ची बात बताता हूँ.
That I tell the truth.
तुम्हारे अनेक जन्मों की हिस्ट्री मैं आकर के बताता हूँ.
I come and tell you the history of your many births.
कोई कागज या बोर्ड पर लिख करके नहीं बताऊंगा एक एक की.
I will not give that of each one in writing on a paper or a board.
ऐसा ज्ञान का तौर और तरीका बता देता हूँ.
But I show you the method or manner of knowledge
जो तुम अपने अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जान सकते हो.
Through which you can analyze the history of your many births.
और अपने बाप के भी अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जान सकते हो.
And also get to know the history of the many births of your father.
क्योंकि तुम हो आत्मा प्लस शरीर.
It is because you are a soul plus a body.
आत्मा शरीर के साथ जीवात्मा के रूप में मनुष्य हो.
You are the human being form with the soul along with the body.
और जो भी सृष्टि पर मनुष्य मात्र आज है 500-700 करोड़.
And all the 5 to 7 billion human beings that are there on this world.
उन सब का बाप है एक.
They all have one father.
जिसे कहा जाता है प्रजापिता.
Who is known as Prajapita.
500-700 करोड़ की जो भी प्रजा इस सृष्टि पर है वो सब का बाप है.
The father of all the 5 to 7 billion subjects of this world.
इसलिए क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं.
That is why the Christians call him as Adam.
आदि पुरुष को.
आदि पुरुष that is ancient man.
मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं.
Muslims call him as Adam.
जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं.
The Jainis call him as आदिनाथ.
और हिंदुओं में उसे आदिदेव कहा जाता है.
And in Hindus he is called as आदिदेव.
त्वमादिदेव है पुरुष है पुराण है.
As is said, त्वमादिदेव पुरुष पुराण. It means you are the first deity and the ancient man.
तो वो आदि पुरुष उसमें आकर के परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं.
So the supreme soul comes and enters in that ancient man, the first man of the world.
और बताते हैं बच्चे.
And says, children.
अभी ये तुम्हारा मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूबल.
This human birth of yours is very valuable.
और मनुष्य जन्म में जो तुमने ये शरीर लिया है ये भी बहुत वैल्यूबल.
That too, the body you have worn in this human birth is also very valuable.
क्यों?
Why?
क्योंकि यही एक शरीर है सत्युग के आदि और संगम युग कलयुग के अंत का संगम में.
बिकॉज दिस इज द ओनली बॉडी वोन इन द कॉन्फ्लुएंस एज एट द एंड ऑफ आयरन एज एंड एट द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज.
जिस युग में तुम ये शरीर धारण करके परमात्मा बाप से बात करते हो.
ड्यूरिंग विच पीरियड यू टॉक टू द सुप्रीम सोल फादर.
परमात्मा बाप से दृष्टि लेते हो.
यू टेक द दृष्टि फ्रॉम द सुप्रीम सोल फादर.
परमात्मा बाप से खेल खेलते हो.
प्ले विद द सुप्रीम सोल फादर.
तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं.
ईट विद यू, प्ले विद यू, सिट विद यू, बी विद यू इन एवरी ब्रेथ. सो गोज द सेइंग.
बाप आया हुआ है.
फादर हैज कम.
इस दुख की सृष्टि में जब इस दुखों की इंतहा हो जाती है.
When there occurs the extremes of sorrow in this sorrowful world.
अशांति की इंतहा हो जाती है.
When there occurs the extremes of restlessness.
तो बाप आकर के इस सृष्टि से हमको ले जाते हैं.
Then the father comes and takes us from this world.
अपने घर शांति धाम ले जाते हैं.
Takes us to his home, Shanti Dham, that is the abode of peace.
लेकिन
but
ऐसे नहीं सोचना है कि हम ये शरीर छोड़ दें और शांति धाम चले जाए.
We should not think that we will go to Shanti Dham by leaving this body.
तो बजाय शांति धाम जाने के क्या होगा? और ही जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनते रहेंगे.
Then, instead of going to Shanti Dham, we will get to become ghosts over many births.
भूत प्रेत वो आत्माएं बनती है जो अपने शरीर की हत्या करती है अथवा दूसरे के शरीर की हत्या करती है. हिंसक बनती है।
Those souls will become ghosts who will kill their body as well as kill others, become harmful.
बाप तो अहिंसक युद्ध कराने आया है।
Father has come to make you fight non-violently.
ये पढ़ाई पढ़ाता है।
He teaches us this.
और पढ़ाई के बाद ऐसी लड़ाई सिखाता है।
And then arranges such a battle.
जिस लड़ाई में कोई हिंसा नहीं होती।
In which any kind of violence does not take place.
कोई प्रकार का खून खराबा नहीं।
No shedding of blood in any manner.
वो महात्माएं होते हैं। वो भी नहीं सिखाते कि खून खराबा करो, हिंसा करो।
Even the great souls do not teach to shed blood, to do harm.
फिर भी मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में लिख दिया है।
Even then, the human teachers wrote in scriptures.
कि भगवान राम ने बाण चलाए और बाणों से रावण को बींद डाला।
That God Ram had shot Ravan with arrows and pierced him.
कुंभकर्ण की हिंसा कर दी, मेघनाथ की हिंसा करवाई दी, राक्षसों का विनाश कराई दिया।
He had killed Kumbhakarn and Meghnath. He destroyed the Rakshasas, that is the demons.
वास्तव में इन बातों का सही अर्थ बाप आकर के बताते हैं कि ये तो ज्ञान बाण है।
Actually, father comes and gives us the real meaning for these things. That these are the arrows of knowledge.
जो सदा से वे सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में हम बच्चों को देते हैं।
Which the Sadashiv, that is the ever benevolent, comes and gives to us children at the end of Iron Age.
इन ज्ञान बाणों से हम कोई भी मनुष्य आत्मा के आसुरीपन को नष्ट कर सकते हैं।
With these arrows of knowledge, we can destroy the evil in any human being.
मनुष्य की बुद्धि में जब सच्चाई बैठती है तो झूठ उड़ जाता है।
When the truth sits in the intellect of a man, then the lie vanishes.
सच्चाई नहीं बैठी होगी तो झूठ कैसे उड़ेगा?
If the truth has not sunk in, then how can lie vanish?
झूठ खंड की आज की दुनिया है।
Today, the world is a false world.
और भगवान जो दुनिया बना करके जाता है वो है सत्य खंड।
And the world created by God is a truthful world.
उसका नाम है सत्ययुग।
It is named Satyug. What kind of a world? A truthful world.
वो खुद भी सत्य है।
He himself is also truthful.
अंग्रेज लोग कहते भी है God is truth. भगवान सत्य है।
Englishmen say too that God is truth.
सत्य को ही भगवान कहा जाता है।
Truth is said to be God.
नहीं तो वास्तव में वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आँखों से देखा भी नहीं जाता।
Otherwise, he is a very minute point of light which cannot be seen through these eyes.
हाथ से उसे पकड़ भी नहीं सकते।
We cannot touch it with hands.
बुद्धि से सिर्फ याद कर सकते हैं उस सूक्ष्म ज्योति बिंदु को।
We can only remember that minute point of light with the intellect.
वो हम ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है।
He is the father of we souls who are points of light.
जो हम ज्योति बिंदु आत्माएं भ्रकुटि के मध्य में सितारा के मिसल बैठी हुई।
We point of light souls are seated in between the eyebrows like a star.
जिनकी यादगार में टीका लगाया जाता है।
The reminder of which is being shown by applying टीका over the forehead.
टीका माने स्मृति में टिकने की निशानी कि हम आत्मा हैं।
टीका, that is the vermilion, is a sign of remaining in the awareness that we are a soul.
माताएं बिंदी लगाती
हैं। Mothers apply bindi, that is a dot.
मस्तक में क्यों लगाते हैं भ्रकुटि के बीच में?
Why do they apply it only on the forehead between the eyebrows?
क्योंकि भ्रकुटि के बीच में आत्मा निवास करती
है। Because the soul resides between the eyebrows.
तो आत्माओं का बाप हमको अब आत्मा बनाने के लिए आया।
So the father of all the souls has come to make us soul conscious.
बल मनुष्य तन हमने लिया है, ये बहुत वैल्यूएबल तन है, फिर भी ये बात बताता है क्या? ये देह को भूल जाओ।
Even though we have taken a human body which is very valuable, he says, what? That forget this body.
बल बहुत वैल्यूएबल है, फिर भी क्या करो? भूल जाओ।
Even though it is valuable, forget it.
इस तन को, इस वैल्यूएबल तन को जबरदस्ती खत्म मत कर दो।
Do not finish this body forcibly.
कि परेशान होकर के हम ये शरीर ही छोड़ देंगे? नहीं।
that we will leave this body out of vexation. No.
इसकी वैल्यू तो बहुत है, लेकिन बुद्धि से इसे भूल गए.
This body has very much value, but we have to forget it with intellect.
देह को भी भूलना है और देह के संबंधों को भी भूलना है.
We have to forget the body as well as the bodily relationships.
क्या याद करना है? हम हैं आत्मा और जो भी संबंधी है वो सब हैं आत्मा.
What should we remember? That we are souls and all our relations are also souls.
तो आत्मा आत्मा सा भाई भाई.
So all the souls are brothers.
कोई प्रकार का मोह नहीं पैदा होगा.
Any type of attachments will not arise.
दूसरे को आत्मा समझेंगे तो क्रोध पैदा नहीं होगा.
If we consider others as souls, then anger will not arise.
तो क्या होता है, मैं पहलवान हूँ.
Otherwise, what happens is, if we consider ourselves as a wrestler,
इसने मेरे को लात कैसे मार दी?
Then we think that how did he kick me like this?
मैं इसकी अभी हाल बुरी बनाता हूँ.
I will show him now.
तो ये जो देह का अहंकार है वो क्रोध भी लाता है.
This bodily ego also brings anger.
इस देह के अहंकार से ही पांच विकार पैदा होते हैं.
The five vices are born out of this bodily ego.
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. ये पांचों विकार इस देह के अंदर भरे हुए.
The five vices of sex, anger, greediness, attachments and ego are filled in this body.
फिर भी कहते हैं ये तुम्हारी देह बहुत वैल्यूबल है. क्यों?
But still it is said that this body of yours is very valuable. Why?
क्योंकि इसी देह के द्वारा, इस जीव के द्वारा तुम भगवान का इतना श्रेष्ठ ज्ञान लेते हो कि नर से नारायण जैसे बन जाते.
Because through this living body only you intake such a great knowledge given by God that you become like Narayan out of a man.
नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाते.
And like Lakshmi out of a woman.
तो वैल्यूबल तन हुआ ना.
So it is a valuable body, is it not?
और किसी जन्म में ये चांस नहीं मिलता.
You will not get such a chance in any other birth.
ये तो शास्त्रों में ऐसी ही बातें लिख दी है.
It has been written just like that in the scriptures.
कि सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह के रूप में आया.
That in the golden age, to kill Hiranyakashyap, a demonic king, he, that is God, had come in the form of Narasingh.
त्रेता में राम के रूप में आया.
He had come in the form of Ram in Treta.
अरे सत्युग में तो है ही सत्य का.
Hey, it is the age of truth in golden age.
वहाँ मारे 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 की तो बात ही नहीं हो सकती.
There cannot be any killing and beating there.
जो असत्य की दुनिया है, झूठ की दुनिया है, वहाँ मारा मारी चलती.
Beating and killing takes place in the false world, in the world of lies.
त्रेता में तो रामराज जी का गायन.
The kingdom of Ram is in fact praised in Treta.
कहते हैं रामराज जी में सब सुखी थे.
They say that all were happy in the kingdom of Ram.
तो वहाँ भगवान को आने की क्या दरकार?
Then what is the necessity for God to come there?
फिर कहते हैं त्रेता के अंत में कृष्ण बन करके आया. कृष्ण भगवान आया. अरे
Then they say that he had come in the form of Krishna at the end of Treta, that the Lord Krishna had come.
Treta ke ant mein aaya hota ya Dwapar ke ant mein aaya hota Krishna bhagwan ban kar ke to kya papi kaliyug ki sthapna karke jayega?
If he had come at the end of Treta or at the end of Dwapar as Lord Krishna, then will he establish the sinful iron age and go?
भगवान तो पापी दुनिया का खलासा करने के लिए.
गॉड इन फैक्ट कम्स टू फिनिश ऑफ द सिनफुल वर्ल्ड.
पाप की दुनिया स्थापन करने के लिए नहीं आता है.
ही डज नॉट कम टू एस्टैब्लिश अ सिनफुल वर्ल्ड.
तो ये भी बात झूठी है.
सो दिस मैटर इज ऑल्सो फॉल्स.
क्या?
वॉट?
कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने आकर के महाभारत युद्ध कराया और पाप की दुनिया कलयुग स्थापन कर दिया.
That God Krishna had come during the end of Dwapar, that is the Copper Age, caused the Mahabharat war and established the sinful world of Kaliyug, that is Iron Age.
नहीं.
No.
कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए तब ही मकान बनाता है जब पुराना मकान टूट फूट जाता है.
Any father will construct a new house for his children only when the old house dilapidates.
ये भी सृष्टि रूपी मकान है.
This world also is in the form of a house.
इस सचरूपी मकान को बनाने के लिए बाप आया हुआ है.
फादर हैज कम टू कंस्ट्रक्ट दिस वर्ल्डली हाउस.
ये मनुष्य शक्ति रूपी मकान है.
दिस इज अ ह्यूमन वर्ल्डली हाउस.
और मकान के दुकान के या मनुष्य के या दुनिया की कोई भी चीज के चार आयाम होते.
जस्ट लाइक एनी अदर हाउस शॉप द ह्यूमन बॉडी और एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड पोजेसेस फोर स्टेजेस.
सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो.
The Satopradhan, Satosamanya, Rajo and the Tamo. That is, the purest, the pure, the less pure and the impure.
जैसे मनुष्य है, शैशवावस्था में सतोप्रधान है, कोई विकार नहीं होता, विकृति होती नहीं नाम मात्र को भी.
Just like in a human being, in childhood he is the purest. There will not be any vices at all. The vices do not exist even for namesake.
फिर किशोरावस्था आती है.
Then adolescence comes.
वहाँ भी कोई विकार का इतना ज्यादा नहीं होता है नशा.
इवन देयर द इंटॉक्सिकेशन ऑफ वाइसेस हार्डली एग्जिस्ट.
फिर जवानी आती है, तीसरी अवस्था, वो है रजोप्रधान स्टेज.
देन द थर्ड स्टेज, दैट इज द एडल्टहुड कम्स, दैट इज द रजोप्रधान स्टेज.
उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब उदित हो जाते और बढ़ते ही जाते हैं.
In that stage, all the vices, that is the sex lust, anger, greed, attachment and ego emerge out and go on increasing progressively.
Aur last mein aati hai vanaprastha avastha.
And the last stage is the vanaprastha stage, that is the age of retirement.
Tamopradhan stage.
The tamopradhan stage, the impure stage.
Boodha manushya ho jata hai, indriya kaam bhi nahi karti.
Man becomes old, the bodily instruments, that is, the organs do not work.
सुख भोगना चाहता है लेकिन इंद्रियों से सुख भी नहीं भोग सकता.
He wants to enjoy pleasure but cannot enjoy it through the organs.
ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो कहते हैं वृद्धावस्था.
In such a stage, it is called as वृद्धावस्था, which means senility.
ऐसे ही दुनिया की हर चीज चार आयाम से गुजर.
In the same manner, everything in the world goes through the four stages.
तो ये दुनिया भी, ये सृष्टि भी चार अवस्थाओं से गुजरती है.
Therefore, this world also, this creation also goes through the four stages.
सृष्टि में 16 कला संपूर्ण होती है.
It is 16 celestial degrees complete in the golden age.
मनुष्य भी 16 कला संपूर्ण होती है.
Even the humans are 16 celestial degrees complete.
त्रेता में 14 कला होती है.
It is of 14 celestials in त्रेता.
द्वापर में 8 कला और कलयुग में 4 कला से कम होती होती कला ही.
8 celestials in द्वापर एंड फ्रॉम 4 celestials द स्टेज रीचेस टू nil इन कलयुग.
अभी सारी सृष्टि के मनुष्य सब कलाहीन हो गए.
नाउ ऑल द ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड आर कलाहीन, दैट इज वर्चुलेस.
सब दुखदायी हो गए.
एवरीवन हैज बिकम एन ऑप्रेसर.
कोई नहीं छाती ठोक करके कह सकता.
नो वन कैन से विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस
कि हम किसी को मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं देते.
That they do not give sorrow to anyone by mind, utterance and act.
सब एक दूसरे को काटते रहते हैं.
Everyone keeps tormenting each other.
जब ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है तब बाप आकर के सुख की सृष्टि रचते हैं.
When this becomes the situation of the world, then father comes and creates the joyous world.
तो बताते हैं.
He says,
ये सृष्टि जो सुख की रचनी है और तुम बच्चों को नर से नारायण जैसा, नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बनना है, उसके लिए इस शरीर की बहुत वैल्यू है.
इफ अ हैप्पी वर्ल्ड हैज टू बी क्रिएटेड एंड इफ यू हैव टू बिकम नर टू नारायण एंड फ्रॉम नारी टू लक्ष्मी, फॉर दैट दिस बॉडी इज वेरी वैल्यूएबल.
खास करके जिस इस शरीर के द्वारा तुम बाप के बच्चे बनते हो.
You become the child of the father especially through this body.
और कोई जन्म में ऐसा जन्म नहीं होगा, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जब तुम डायरेक्ट शिव बाप के बच्चे बनो.
No other birth will be so. In no other birth will you get such a body where you become the direct child of Shiv Bap.
शिव बाप के बच्चे?
The child of Shiv Bap.
शिव बाप ज्योति बिंदु बच्चे पैदा करता है क्या?
Does the point of light Shiv Bap produce children?
वो दिव्य जन्म देता है.
He gives a divine birth.
वो दिव्य जन्म लेता भी है.
He himself takes a divine birth also.
और दिव्य जन्म देता भी है.
And also gives a divine birth.
लेता कैसे है?
How does he take?
कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है.
ही एंटर्स इन सम ह्यूमन फॉर्म.
जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ.
जस्ट एज इट इज रिटन इन गीता एज प्रवेश तुम, आई एम एलिजिबल टू एंटर.
जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं तो क्या परमात्मा बाप प्रवेश नहीं कर सकता है? लेकिन अंतर है.
इफ द गोस्ट एंड इविल स्पिरिट्स कैन एंटर देन कांट द सुप्रीम सोल फादर एंटर. बट देर इज अ डिफरेंस.
भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर की ताकत से प्रवेश करते हैं.
द इविल स्पिरिट्स एंड द गोस्ट एंटर विद द स्ट्रेंथ ऑफ द सटल बॉडी.
इसलिए जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, उसके ऊपर वजन पड़ता है.
That is why on their entrance the face and the features of the one who is entered into changes. It is weighed down on.
मनुष्य आत्मा थक जाती है भूत प्रेत की प्रवेशता से.
Human souls get tired with the entrance of an evil spirit and ghost.
और परमात्मा शिव को सूक्ष्म शरीर का पावर नहीं होती, वो तो सिर्फ ज्योति बिंदु है हल्का फुल्का.
And the supreme soul Shiv does not have the power of the subtle body. He is only the point of light. Very light.
तो जिसमें भी प्रवेश करता है वो हल्का फुल्कापन महसूस करता है.
Therefore, in whosoever he enters, they experience light weight.
कोई प्रकार का दबाव नहीं, कोई प्रकार का चेहरा मोहरा बदलता नहीं, आवाज बदलती नहीं.
No type of pressure. The face and features do not change in any manner. Voice does not change.
पता भी नहीं चलता कब आया और कब चला गया.
Will not even know when he came and when he went away.
बाद में पता चलता है.
One comes to know afterwards.
अरे ये इस तरह की बातें मेरी बुद्धि में कहाँ से आ गई?
Hey, from where did such type of things come into my mind?
इस तरह का ज्ञान तो मैंने कभी अपने मुख से किसी को सुनाया ही नहीं. ये तो नए नए पॉइंट आ गए.
I did not utter such type of knowledge to anyone any time. New points have come up.
तो भगवान बाप आते हैं, आजा वैशिष्टि पर आते हैं तो आकर के सारी नई नई बातें सुनाते.
सो व्हेन द गॉडफादर कम्स इन दिस वर्ल्ड ही टीचर्स एवरीथिंग न्यू.
मनुष्य तो वही शास्त्रों की लिखी हुई पुरानी पुरानी बातें सुनाते रहते हैं.
ह्यूमंस टीच द सेम ओल्ड थिंग्स रिटन इन शास्त्रस.
मनुष्य गुरु प्रवचन करते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं मनुष्यों के लिखे हुए और वही शास्त्र सुनाते रहते.
When human gurus do the discourse, they read the scriptures written by man and teach the same.
नई बात तो कोई भी नहीं सुनाते.
No one teaches anything new.
बाप आकर के सारी नई बातें सुनाते.
Father comes and teaches everything new.
नई दुनिया रचने के लिए ज्ञान भी कैसा चाहिए?
What kind of knowledge is needed to create a new world?
नया चाहिए या पुराना? नया ज्ञान चाहिए.
Is new knowledge needed or old? New knowledge is needed.
नई दुनिया रचते हैं, नया ज्ञान सुनाते.
He creates a new world and imparts new knowledge.
और हम बच्चों को पुराने से नया बनाते.
And makes us children from old to new.
आत्मा को ही पुराने से नया नहीं बनाते, ये शरीर को भी रिजुविनेट करते हैं.
Not only makes the old soul to new, but rejuvenates the body also.
जैसे सांप का मिसाल है.
Just like there is the example of a snake.
शास्त्रों में तो सिर्फ मिसाल दे देते हैं.
They just give examples in shastras.
उसका क्लियर करके अर्थ तो बताते नहीं.
They do not clear its meaning.
कि सांप कैसे चार आयामों में अपनी जिंदगी में चार बार खल त्याग करता है.
As to how the snake sheds its skin four times in its life in four stages.
और नई खल आ जाती है.
And the new skin appears.
ये मिसाल तुम बच्चों का है.
दिस एग्जाम्पल इज ऑफ यू चिल्ड्रन.
सांप का मिसाल हमको क्यों दे दिया हम बच्चों को?
वाई द एग्जाम्पल ऑफ स्नेक इज गिवन टू अस चिल्ड्रन.
इसलिए दिया कि जैसे सर्प बहुत विकारी होता है.
इट इज गिवन बिकॉज जस्ट एज स्नेक इज वेरी विशियस.
काम विकार में सबसे ज्यादा विकारी होता है.
इट इज पर्टिकुलरली मोर विशियस विद रिगार्ड टू सेक्स लस्ट.
ऐसे बाप के जो बच्चे हैं.
In the same manner, the children of the father,
जो बाप के गले में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं चित्रों में,
who are shown clinging on to the neck in the pictures,
बाह में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं, कमर में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं, सर के ऊपर बैठे हुए दिखाए जाते हैं,
shown clinging on to the arms, clinging on to the waist, shown seated on the head,
देखे?
हैव यू सीन?
चित्र में देखा ना? चित्र बनाया हुआ है तो जरूर चरित्र की यादगार है।
यू हैव सीन इट इन द पिक्चर्स, इज इट नॉट? If it has been depicted, then definitely it is a memorial of the character that was played.
तो ऐसे सांप के समान अति कामुक बच्चे।
Therefore, such children who are extremely lustful, like a snake,
उनको सांप का मिसाल दिया जाता है।
They are given an example of a snake.
वो बाप से चिपक के रहते हैं।
They stick to the father.
क्यों?
Why?
क्योंकि बाप से जो संग का रंग उनको मिलेगा तो उनका सारा विष निकल जाएगा।
बिकॉज इफ दे गेट कलर्ड बाई द कंपनी ऑफ द फादर देन ऑल देयर पॉइजन इज रिमूव्ड।
बाप तो आता ही है शंकर में प्रवेश करके।
फादर कम्स एंटरिंग इन शंकर,
इसलिए शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है।
दैट इज वाई इट इज सेड ए शिव शंकर भोलेनाथ मीन्स द कंट्रोलर ऑफ इनोसेंस।
कहते शंकर ने विष पिया।
It is said that Shankar drank poison.
तो विषय विकारों का जो विष पीना है।
So the drinking of poison of vices,
तो इसे अंतिम जन्म की बात है।
Is the saying of this last birth.
अंतिम जन्म में हम सब विषय विकारी बन जाते।
All of us become vicious in this last birth.
उन विषय विकारियों को बाप आकर के निर्विष बनाते हैं।
The father comes and makes the vicious into the viceless.
पहले आत्मा रूपी मणि की याद दिलाते हैं।
At first, he reminds them of the soul that is like a gem.
कि तुम आत्मा हो।
That you are a soul.
तुम देह नहीं हो।
You are not a body.
आत्म की स्थिति सुबह से लेकर शाम तक जितनी धारण करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे।
And the more you practice the soul conscious stage from dawn to dusk,
उतना ही जल्दी तुम मनुष्य से देवता बनेंगे।
That much earlier, you will become a deity from a human.
कितना सहज ज्ञान समझाते हैं।
ही टीचर्स सच अ सिंपल नॉलेज।
और कलयुग के अंत में ही आकर के समझाते हैं।
एंड दैट टू ही एक्सप्लेन्स कमिंग एट द एंड ऑफ कलयुग।
और किसी युग में नहीं समझाते हैं।
ही डज नॉट एक्सप्लेन इन एनी अदर एज।
तो ये मनुष्य तन की बहुत वैल्यू है।
देयरफॉर दिस ह्यूमन बॉडी इज वेरी वैल्यूएबल।
अच्छा ये तो हमारा मनुष्य तन है।
वेल दिस इज आवर ह्यूमन बॉडी।
मनुष्य है।
वी आर ह्यूमन्स।
इससे पहले के जन्मों में जो 62-63 जन्म हुए उनमें हम क्या थे?
वॉट वेर वी इन द 62-63 बर्थ्स प्रीवियस टू दिस बर्थ?
मनुष्य नहीं थे क्या?
वेर वी नॉट ह्यूमन्स?
मनुष्य कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को।
दोज हू डू द मनन चिंतन मंथन दैट इज जर्निंग आर नोन एज मनुष्य।
जिसको मन है वो मनुष्य है और मन का उपयोग करता है।
दोज हू हैव अ माइंड आर मनुष्य And they use the mind.
मन का उपयोग न करे, मनन चिंतन मंथन न करे, ऐसे ही जानवरों की तरह कोई काम वासना आए और काम वासना भोग ले, क्रोध आए और आक्रमण कर दे।
If one does not use the mind and does not churn, if he does actions like an animal, that is, if he develops the desire of lust and he enjoys it, he develops anger and he attacks.
जैसे जानवर करते हैं।
Like how the animals do.
तो मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क रहा?
Then what is the difference between human beings and the animals?
मनुष्य मन का उपयोग करे तो मनुष्य।
If man uses his mind, then he is a human being.
और मन का उपयोग न करे तो मनुष्य नहीं वो जानवर है।
If he does not use the mind, then he is not human being, but an animal.
जानवर से भी बदतर। मनुष्य जब बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है।
When man degrades and becomes worse than an animal, he becomes a rakshas, that is a demon.
और मनुष्य जब सुधरता है तो देवता बन जाता है।
And when man improves, he becomes a deity.
मनुष्यों की ही बात है।
It is a matter of human beings.
देवता कैसे बनता है?
How does one become a deity?
भगवान बाप जब आते हैं आत्मा परमात्मा का परिचय देते हैं तो परमात्मा बाप की याद से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं।
When the Godfather comes, when he gives the introduction of the soul and the supreme soul, then through the remembrance of the supreme soul father, we become a deity from a human being.
और राक्षस कैसे बनते हैं?
How does one become a demon?
बाप की याद से, बाप के संग के रंग से हम मनुष्य से देवता बनते हैं।
By the remembrance of the father, by the color of the company of the father, we become a deity from a human being.
बंदर से मंदिर लायक बनते हैं.
वी चेंज फ्रॉम बीइंग अ मंकी टू बीइंग वर्दी ऑफ अ टेम्पल.
तो लिख दिया है शास्त्रों में राम ने बंदरों की सेना ली.
हेंस इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट राम यूज्ड द आर्मी ऑफ मंकीज.
अरे
हे
रावण को मनुष्य मिल गए लड़ाई लड़ने के लिए.
रावण फाउंड द ह्यूमंस फॉर फाइटिंग ऑन हिज साइड.
और राम को बंदर मिले.
एंड राम फाउंड मंकीज.
ये तो बातें शास्त्रों में जो बताई है उनका सही अर्थ बाप आकर के बताते.
फादर हैज कम एंड गिव्स अस द ट्रू मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स दैट हैव बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स.
बंदरों की सेना नहीं ली लेकिन बंदर जैसे मनुष्यों की सेना ली.
He did not take the army of monkeys, but the army of humans who were like monkeys.
जो बंदर जैसे विकारी होते हैं.
Who are vicious like the monkeys.
अति के विकारी, अति के क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी. उनको आकर के मैं बंदर लाइक बनाता
हूँ. Extremely vicious, extremely angry, greedy, one with extreme attachment and egoistic. I come and make them worthy of a temple.
मंदिर लायक बनाता हूँ तो उनकी पूजा होती है.
When I make them worthy of a temple, then they are worshipped.
देवताओं की पूजा होती है, राक्षसों की पूजा नहीं होती.
The deities are worshipped. The demons are not worshipped.
उन्हें रावण की पूजा करते हुए किसी को देखा क्या?
Has anyone seen someone worshipping रावण?
हिरण्यकश्यप या कंस की पूजा करते हुए किसी को देखा क्या?
Has anyone seen someone worshipping हिरण्यकश्यप और कंस?
उनके मंदिर नहीं बनाए जाते.
Their temples are not built.
पूजा देवताओं की होती है क्योंकि देवताओं ने बाप की श्रीमत पर चल करके पवित्रता को धारण किया.
The deities are worshipped because the deities tread on the path of Father Srimad and practice purity.
पवित्र बने.
They became pure.
अपवित्रता को त्यागा.
They renounced impurity.
बाप का संग का रंग लिया और दुनिया का संग त्याग.
They got colored by the company of the father and renounced the company of the world.
इसलिए कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई.
That is why it is said, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई. Mine is only one Shiv Baba and no one else.
मन बुद्धि में भी दूसरों की याद न आए.
Let even the intellect not remember anyone else.
वाचा से दूसरों का कीर्तन न हो, दूसरों की महिमा न हो.
Let the words spoken not be in praise of anyone else. That is, let others not be praised.
कर्म भी जो भी करें, वो सारे बाप के लिए करें.
Whatever actions are done, let it be done for the father alone.
स्वार्थ के लिए न करें.
Let it not be done for a selfish motive.
देह और देह के संबंधियों के लिए न करें.
Or for the body, or for the bodily relations.
अगर करें भी तो ये समझ करके करें कि ये बाप के बच्चे हैं.
Even if it is done, let it be done with the consideration that they are the father's children.
हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं और आत्मिक रूप में जो बच्चे बने हुए हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं.
We all souls are brothers among each other and we are serving those who have become children in the soul conscious way.
Baki kaise jane ki kaun aatmik roop mein tike hue hai aur kaun aatmik roop mein nahi tike hue hai.
As for the rest, how do we know who is fixed in the soul conscious stage and who is not?
500 crore ki 700 crore ki duniya pata kaise chale inme rakshas sampraday kaun hai और दैवी संप्रदाय कौन है?
इट इज अ वर्ल्ड ऑफ 5 to 7 billion. हाउ डू वी नो हु बिलोंग्स टू डीमंस कम्युनिटी एंड हु बिलोंग्स टू द डीटी कम्युनिटी.
आत्मा कौन है और देहंकारी कौन है?
हु इज अ सोल एंड हु इज बॉडी कॉन्शियस.
तो बाप तो कहते हैं मैं तो आत्माओं को आकर के पढ़ाता हूँ.
फादर इन फैक्ट सेज आई कम एंड टीच द सोल्स.
आत्माओं से बात करता हूँ.
आई टॉक टू द सोल्स.
देह अभिमानियों से बात ही नहीं करता.
I do not talk to the body conscious at all.
देहंकारियों से मैं कोई कनेक्शन नहीं रखता.
I do not keep any connection with those who are body conscious.
अच्छा.
Well.
तो जब आत्मा को पढ़ाते हैं तो पता कैसे चले?
If he teaches the souls, then how does one know?
बाप कहते हैं बाप के संबंध के आधार पर तुम अपने संबंध रखो.
The father says, you keep your relationships based on the relationship of that soul with the father.
बाप का जिन बच्चों से कनेक्शन है उनसे तुम अपना कनेक्शन रखो।
यू कीप कनेक्शन विद दोस चिल्ड्रन विद होम फादर कीप्स कनेक्शन।
बाकी संदेश तो सबको देना है।
एज फॉर द रेस्ट द मैसेज हैज टू बी गिवन टू एवरी वन।
संदेश देना ये हर बच्चे का फर्ज है।
इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सोल टू गिव द मैसेज,
चाहे कोई भी हो,
हूएवर इट बी,
चाहे कैसा भी हो,
हाउएवर दे बी।
बाप के आने का संदेश सबको देना है।
द मैसेज ऑफ फादर्स अराइवल हैज टू बी गिवन टू एवरी वन,
क्योंकि बाप आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए।
बिकॉज द फादर हैज कम टू रिडीम द सिनर्स,
वो पतित पावन बाप ही बताते हैं।
दैट फादर हु इज द रिडीमर ऑफ द सिनर्स हिमसेल्फ सेज,
ये सारी मनुष्य सृष्टि पतित हो चुकी है, इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है।
That this whole human creation has become patit, that is impure. There is not even a single pure in this impure world.
Sab patit hai.
All are impure.
Sab patit bhrashtachari hai.
All are impure and corrupted.
Bhrasht indriyon ka aachan karne wale hai.
They are the ones who use the degrading organs.
Ab main aakar ke shesh indriyon se aachan karne wala devata banata hu.
Now I come and make them the deities who use the elevated organs.
Shesh indriya hai, naak, aankh, kaan.
The elevated organs are the nose, eyes and ears.
Jo gyan indriya kahi jati hai.
That are known as the organs of knowledge.
In gyan indriyon se tum satyug mein aachan karte the.
You used to act through these organs in satyug.
Aur shesh indriyon ki aulaad paida hoti thi.
And the progeny of the elevated organs used to be born.
उसकी एज बहुत लंबी होती थी।
इट लिव्ड वेरी लॉन्ग।
और सारा जीवन सुखी सुख होता था।
एंड द होल लाइफ यूज्ड टू बी फुल ऑफ ओनली हैप्पीनेस।
अभी भ्रष्ट इंद्रियों की जो औलाद पैदा होती है,
नाउ द प्रोजेनी दैट इज बॉर्न थ्रू द डिग्रेडेड ऑर्गन्स,
वो फाउंडेशन पीरियड में भी दुखदायी होती,
इज सॉरो गिविंग इवन ड्यूरिंग द फाउंडेशन पीरियड।
माँ को भी दुख होता है, बाप को भी अशक्ति अनुभव होती है और बच्चा भी रोता हुआ पैदा होता है।
The mother experiences pain, the father also experiences loss of energy, and even the child is born crying.
9 महीने जब गर्भ में बच्चा पलता है तो त्राय त्राय करता है बाहर निकलने के लिए।
When the child is growing within the womb for 9 months, it keeps crying for mercy to come out.
सत्युग-त्रेता में ऐसा फाउंडेशन पीरियड में कोई दुख नहीं होता।
ड्यूरिंग द फाउंडेशन पीरियड सत्युग एंड त्रेता देर इज नो सच सोरो।
आत्मा गर्भ महल में अनुभव करती है।
द सोल एक्सपीरियंसेस बीइंग इन द पैलेशियल वूम,
सुख से जन्म लेती है।
इट टेक्स बर्थ ब्लिसफुली,
सुख से बीज डाला जाता है।
द सीड इज ऑल्सो सोन ब्लिसफुली।
इसलिए सत्युग त्रेता की दो युगों की सृष्टि मैं स्थापन करता हूँ।
दैट इज वाई आई एस्टैब्लिश द क्रिएशन ऑफ द टू एजेस, दैट इज द सत्युग एंड त्रेता,
और द्वापर कलयुग की राक्षस की सृष्टि है।
And the creation of Dwapar and Kaliyug is devilish.
ये राक्षसी सृष्टि मैं स्थापन नहीं करता हूँ।
I do not come and establish this devilish world.
ये दूसरे धर्मों के जो धर्म पिताएं आते हैं।
The religious fathers of other religions who come.
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह।
Like Ibrahim, Buddha, Christ, Guru Nanak, etc.
ये आकर के ऐसा द्वैत फैलाते हैं देवताई मत में।
They come and spread such a duality in the deity religion.
कि दो दो बातें हो जाती हैं, दो दो मतें हो जाते हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो राज्य स्थापन हो जाते हैं।
That two things emerge, two directions emerge, two religions emerge, two kingdoms are established.
जब ऐसा द्वैतवाद इस दुनिया में फैलता है तो लड़ाई झगड़े और मारामारी बढ़ती है।
When such a dualism spreads in this world, the conflicts and hostilities increase.
अगर एक ही मत हो, दुनिया में एक ही धर्म हो, दुनिया में एक ही राज्य हो।
इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन डायरेक्शन, वन रिलीजन इन द वर्ल्ड, वन किंगडम,
एक ही वंश हो, एक ही कुल हो, एक ही राजा हो,
वन डायनेस्टी, वन कल्ट, वन किंग,
तो लड़ाई झगड़े मारामारी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
देन देयर वुड नॉट अराइज द क्वेश्चन ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हॉस्टिलिटीज।
तो द्वैतवादी दुनिया मैं स्थापन नहीं करता हूँ।
सो आई डू नॉट एस्टैब्लिश द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिज्म।
तो कौन स्थापन करता है?
देन हु एस्टैब्लिशेस?
संगम युग में ही तो हर बात का फाउंडेशन पड़ता है।
The foundation of all these takes place in the confluence age only, is it not?
नई दुनिया का भी foundation पड़ता है.
The foundation of new world also takes place.
बाप आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं.
Father comes and establishes the new world.
फिर कलयुग की दुनिया, द्वापर युग की दुनिया, द्वैतवादी दुनिया कहाँ से आ जाती है?
Then, from where does the world of Iron Age, Copper Age, dualistic world come?
हम बच्चे ही इसका foundation डालते.
We children only lay the foundation for all this.
भगवान बाप आते हैं तो श्री मत देते हैं, माने श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनने का ज्ञान देते हैं.
The Godfather comes to give Shrima, that is, he gives the elevated direction, gives us the knowledge to become the greatest deity.
और हम क्या करते हैं? हम अपनी मनमत उसमें घुसे देते हैं.
And what do we do? We put in our manmat, that is, our own direction into it.
Srimat mein, manmat mix kar dete hai.
We mix manmat into Srimat.
Aur sangi saathi manushyon ki mat usme mix kar dete hai.
And we also add in the directions of our companions into it.
Wo manmat aur manushya mat se dvaitvadi duniya pe sthapan hoti hai.
Out of that manmat or human mat, the dualistic world gets established.
अभी
नाउ इट सेल्फ
इसी मनुष्य तन से
विद दिस सेम ह्यूमन बॉडी
इसी जीवन में
इन द सेम लाइफ
जबकि भगवान बाप आया हुआ है
व्हेन गॉडफादर हैज कम
हम अपने लिए स्वर्ग भी रचते हैं और अपने लिए नरक भी रचते हैं
वी क्रिएट हेवन एज वेल एज हेल फॉर आवर सेल्फ एट द सेम टाइम
अभी स्वर्ग की भी शूटिंग हो रही है और नरक की भी शूटिंग हो
नाउ द शूटिंग इज गोइंग ऑन फॉर हेवन एज वेल एज फॉर हेल
84 जन्मों की शूटिंग अभी हो रही है
नाउ द शूटिंग इज गोइंग ऑन फॉर 84 बर्थ्स
ये सृष्टि रूपी एक ड्रामा है ड्रामा की भी रिहर्सल की जाती है
दिस इज अ वर्ल्ड फॉर्म ड्रामा द रिहर्सल इज डन इन द ड्रामा ऑल्सो
ये भी एक फिल्म है बड़ी से बड़ी चार सीन की सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
This also is a very big film with four scenes, Satyug, Treta, Dwapar and Kaliyug.
ये चार सीन की जो फिल्म है वो फिल्माने वाले हम हैं हम बच्चों में ही कोई हीरो पार्टधारी है हम बच्चों में ही कोई हीरोइन पार्टधारी है और हम बच्चों में ही कोई मुख्य मुख्य पार्टधारी भी
Among us children itself, someone is playing the hero's part and someone is playing the heroine's part. And among us children only, there are some who are important part players.
500-700 crore jo bhi partdhari hai, wo sab abhi is sangam yug mein apne dukh aur sukh ka mood karne wale.
The 5 to 7 billion actors are about to fix their happy and sorrowful parts in this confluence age.
भगवान बाप किसी को दुख और सुख नहीं देता है वो तो सबको एक जैसा ज्ञान दे रहा है
गॉड फादर डज नॉट गिव एनी सोरो और हैप्पीनेस टू एनी वन ही इज गिविंग नॉलेज टू एवरी वन अलाइक
सबको एक जैसी शिक्षा दे रहा है वो बड़े से बड़ा सदगुरु है
ही इज टीचिंग एवरी वन अलाइक ही इज द बिगेस्ट सदगुरु दैट इज द प्रिसेप्टर
उससे बड़ा गुरु कोई दुनिया में होता नहीं
देर इज नो अदर गुरु बिगर देन हिम इन द वर्ल्ड
वो जो टीचर होते हैं दुनिया में वो एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से भी किसी को फायदा हो न हो
द वर्ल्डली टीचर्स दे टीच फॉर ओनली वन बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एनी बेनिफिट इज मेड आउट ऑफ इट और नॉट
कानून का टीचर होगा ला पढ़ाने वाला होगा बैरिस्टर बनाएगा जज बनाएगा कोई जरूरी नहीं बन पाए या ना बन पाए
A teacher of law will make one a barrister or a judge. It is not necessary if anyone becomes or not.
कोई वकील चालान भी नहीं कमाता सारा दिन.
Some lawyers do not earn even a 25 paise in the whole day.
कोई वकील लाखों रुपया कमाता है.
Some lawyers earn lakhs of rupees.
तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाते.
Therefore, at the most, they teach only for one birth.
डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ाएगा, सर्जन बनाएगा.
Doctor teaches medicine and makes a surgeon.
इंजीनियर इंजीनियरिंग की बात बताएगा, इंजीनियर बनाएगा. कोई जरूरी नहीं इंजीनियर बन पाए न बन पाए.
Engineer teaches engineering, makes engineers, but it is not necessary whether one becomes an engineer or not.
इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते हैं और घर में आकर खेती करते हैं.
One learns engineering and comes home and does farming.
पहले तो कुछ भी नहीं हुआ.
there does not arise any benefit out of it.
यहाँ तो बाप गारंटी करते हैं.
Here the father guarantees.
कि मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ, अगर इस पढ़ाई को regular और punctual student की तरह पढ़ेंगे.
That if you learn my teaching like a regular and punctual student,
तो ऊँचे से ऊँचे पद पाएंगे.
Then you will reach topmost status.
नीच पद नहीं पाएंगे. क्यों?
You will not procure a lower post. Why?
क्योंकि जो regular student होता है, punctual student होता है, वो teacher की कदर करने वाला होता है.
Because the regular and punctual students are those who respect the teacher.
Teacher की शिक्षाओं की कदर करने वाला होता है. Teacher की उसको दुआएं मिलती हैं.
They respect the teachings of the teacher. They receive the blessings of the teacher.
ऐसी दुआओं का हकदार student कभी fail नहीं हो सकता.
Such a student who is eligible of such blessings can never fail.
बाप आया हुआ है. वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है.
Father has come. He is the father, the teacher, as well as the preceptor.
बाप बनकर के हमको ब्राह्मण जन्म दिया.
As a father, he has given us the Brahmin birth.
हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, क्योंकि वो आत्माओं का ज्ञान बाप है.
He has given us the knowledge of the soul because he is the father of the souls.
और फिर टीचर भी बनता है.
And he also becomes the teacher.
टीचर बनने से पहले वो माँ के रूप में आता है.
बिफोर बिकमिंग अ टीचर ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मदर.
ब्रह्मा के तन में आकर के हमको बेसिक नॉलेज पढ़ाता है.
ही कम्स इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा एंड टीचर्स अस द बेसिक नॉलेज.
जैसे माँ होती है, ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती.
जस्ट लाइक अ मदर कैन नॉट गिव अस हायर एजुकेशन.
कम से कम बेसिक नॉलेज तो दे सकती है घर बैठे बच्चों को.
At least she could give basic knowledge to the children seated at home.
तो वो भी बड़ी से बड़ी माँ ब्रह्मा शास्त्रों में नाम गाया हुआ है.
So she also is the biggest mother, Brahma, who is praised in the shastras.
जो भी शास्त्रों में नाम है वो सब काम के आधार पर है.
The names in the shastras are based on the work done.
जैसा जिसका काम वैसा शास्त्रों में उसका नाम पड़ा.
As the work done, so are the names given in the scriptures.
जैसे हिरण्यकश्यप नाम है.
जस्ट लाइक द नेम ऑफ हिरण्यकश्यप.
क्या?
वॉट?
हिरण्य माना सोना.
हिरण्य मीन्स गोल्ड.
कश्य माना तेज.
काश्य मीन्स पार.
पा माना पीने वाला.
पा मीन्स द वन हु ड्रिंक्स.
माना सोने जैसी सच्ची आत्माएं, जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उनके तेज को पी लेता है.
मीन्स He drinks the power of the gold-like truthful souls.
क्या? संगमिक की ही बातें हैं. कोई हिरण्यकश्यप भी बन रहे हैं.
What? It is the matter of confluences only. Some are becoming Hiranyakashyap also.
जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, भोले वाले बच्चे हैं बाप के.
The gold-like truthful souls, the innocent children of father who are there.
उनको ठगता है.
He deceives them.
उनका तेज पी लेता है. तेज कौन सा है?
He drinks of their power. Which power?
तेज है purity.
Power of purity.
तो जो purity के तेज को पी लेता है, मन बुद्धि जो निर्विकारी है, उनको विकारी बना देता है.
So the one who drinks of the power of purity makes the pure intellect, that is the viceless intellect, to an impure, that is a vicious one.
तो वो हुआ हिरण्यकश्यप.
So he is Hiranyakashyap.
ऐसे हिरण्यकश्यप ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत पैदा हुए पड़े.
Such Hiranyakashyaps exist in plenty in the Brahmin family.
बाप आया हुआ है शिवालय बनाने के लिए.
Father has come to make शिवालय, the house of the benefactorship.
और उन्होंने ठान लिया कि हम वैश्यालय बना करके रखेंगे.
And they have vowed to make वैश्यालय, the house of prostitutes.
हम शिवालय बनने नहीं देंगे.
They say, we will not allow to construct शिवालय.
बाप कहते हैं सीधे होकर के बैठो बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है.
Father says, sit straight, children, your father has come.
बाप भी है, टीचर भी है, और फिर सतगुरु भी है.
He is the father as well as the teacher and even the preceptor.
टीचर के रूप में वो एक एक बात के हिज्जे करके बताता है.
In the form of a teacher, he clarifies each and everything.
एक एक शब्द के हिज्जे करके बताते हैं.
He clarifies each and every word.
कि इस बात का ये अर्थ है. अच्छी तरह से समझ लो. बाद में ये नहीं कहना कि हमको समझ में नहीं आया.
That the meaning of this thing is this. Understand it properly. Do not tell later that I did not understand.
तो बताता है कि मैं बाप भी हूँ. मैं तुम्हारी माँ भी हूँ.
So he says that I am your father also, mother also.
शास्त्र में तुम गाते आए हो तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव.
You kept singing in the scriptures. You are my mother and father. You are the relative as well as friend.
तुम हर संबंध मेरे साथ जोड़ते आए हो ना.
You have been connecting every relationship with me, is it not?
तो मुख्य संबंध ये हैं.
Therefore, these are the important relationships.
बाप बन करके मैं तुम्हें जन्म देता हूँ. ब्राह्मण जन्म तुमको मिलता है.
As a father, I give birth to you. You get the Brahmin birth.
ब्रह्मा के बच्चे बनते हो.
You become the children of Brahma.
माता बन करके तुमको ज्ञान का दूध देता हूँ.
I feed the milk of knowledge in the form of a mother.
गीता माता तुम्हारे सामने साक्षात प्रत्यक्ष हो जाती है.
गीता माता गेट्स रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू इन प्रैक्टिकल.
गीता ज्ञान
द नॉलेज ऑफ गीता
और गीता ज्ञान गीता माता के रूप में जो आता है.
एंड द नॉलेज ऑफ गीता दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ गीता माता.
उस गीता की गोदी में पल्ले से भी जब पूरा काम नहीं होता तो मैं टीचर बनकर के भी काम करता हूँ.
When the work is not done completely, in spite of sustaining in the lap of that Gita Mata also, then I come and work as a teacher.
Teacher ban karke jab kaam karta hu, to tumhari buddhi ko hilata hu.
When I work as a teacher, I shake your intellect.
Manan chintan manthan yogi banata hu.
I make it eligible to churn.
Ek ek shabd ki gehrai mein le jata hu.
I take you into the deepness of each and every word.
सागर की गहराइयों में तुम बच्चे स्नान करते हो.
You children take part in the deepness of the ocean.
तो तुम्हें फकुर आना चाहिए.
So you must be proud.
क्या हम छोटे छोटे गड्ढे गड़े क्यों छोटी मोटी नदियों में स्नान क्यों करें?
Why should we take bath in small pits and canals?
उन नदियों में स्नान करने से कोई हम पावन नहीं बन सकते.
We cannot become pure by washing ourselves in those rivers.
वो भगत लोग तो जड़ नदियों में स्नान करते आए.
Those worshippers take part in that materialistic rivers.
अरे जड़ नदियों में स्नान करने से जड़ शरीर शुद्ध होगा या आत्मा शुद्ध हो जाए?
Hey, just by taking bath in the materialistic water, does the physical body become pure or does the soul become pure?
जड़ शरीर का ही तो मैल ठीक हो. अच्छा हो निकलेगा.
Only the dirt of the physical body will be removed.
आत्मा का मैल निकालने के लिए
टू रिमूव द डर्ट ऑफ द सोल
ज्ञान जल चाहिए.
द वॉटर ऑफ नॉलेज इज नेसेसरी.
वो भी ज्ञान जल की नदियों से तुम पवित्र नहीं बनते हो.
एंड दैट टू यू डू नॉट बिकम प्योर बाय द रिवर्स ऑफ द वॉटर ऑफ नॉलेज.
ज्ञान सरोवरों से तुम पवित्र नहीं बनते हो.
यू डू नॉट बिकम प्योर बाय द लेक्स ऑफ नॉलेज.
उनसे तो अच्छा नदियों का जल है जो बहता तो रहता है.
The river water is better than them. That at least keeps flowing.
सरोवर का जल तालाब का जल वो तो एक जगह ठहर के रहता है. उसमें तो गंदगी पैदा हो जाती है.
The water of the lakes and the ponds stands still in one place only. Dirt is in it.
लेकिन इन छोटे छोटे गड्ढे गड़ीचियों नदियों नालों में तुम्हें स्नान करने की क्या जरूरत है जब तुमको डायरेक्ट ज्ञान सागर बाप मिला हुआ है.
बट वॉट इज द नीड फॉर यू टू टेक पार्ट इन दीज स्मॉल पिट्स पॉन्ड्स एंड कैनाल्स व्हेन यू हैव गॉट द डायरेक्ट फादर द ओशन ऑफ नॉलेज.
गीता में भी श्लोक लिख दिया है.
देर इज अ श्लोक और अ हिम इन गीता ऑल्सो.
जिसको सागर मिल जाता है और सागर की अनुभूति कर लेता है उसका फिर गड्ढे गड़ीचियों नदियों आदि से कोई प्रयोजन नहीं रहता.
The one who gets the ocean and experiences it, then he has nothing to do with the pits, ponds, rivers, etc.
उनमें उसकी बुद्धि नहीं ठहरती. वो ज्ञान सागर से ही पूरी पढ़ाई पढ़ता है.
His intellect does not settle in that. He studies completely from the ocean of knowledge.
तो ज्ञान सागर बाप सदगुरु के रूप में भी आया हुआ.
So the father, the ocean of knowledge, comes in the form of Sadguru also.
सच्चा गुरु है.
He is the true teacher.
Sikh log kehte bhi hai ek Sadguru Akal Murt.
The Sikh people also say one Sadguru Akal Murt, which means one true teacher in the corporeal form who is immortal.
Ek hi Sadguru hai, baki Sadguru.
Only one Sadguru is there, others are all just gurus.
To jab ek hi Sad mane sachcha guru hai, to baki guru kya ho gaye?
So if only one true guru is there, what are the other gurus?
झूठे हो गए?
They are false.
सब मनुष्य गुरु झूठे हो गए, इसलिए दुनिया पतन के गर्त में जा रही.
All the human gurus, that is teachers, have become false, which is why this world is moving down to a ditch of degradation.
ऐसे पतन के गर्त में जा रही है, गड्ढे में जा रही है, कि उन्हें यही पता नहीं है.
It is going into such a ditch of degradation, into such a ditch that they are not even aware of this fact.
कि हम जिस चीज का निर्माण करके बैठे हैं, वो चीज सारी दुनिया को भी खलास कर देगी और हमको भी खलास कर देगी.
That they have constructed such a thing which will destroy the whole world and will also destroy them.
जैसे कोई आदमी जिस डाली पर बैठा हो और उसी डाली को काट रहा हो.
Just like someone cutting the branch on which he himself is seated.
तो क्या हाल होगा?
Then what will happen?
डाली भी नीचे गिरेगी और खुद भी नीचे गड्ढे में जाएगा.
He himself will also fall down into the ditch along with the branch.
तो आज मनुष्य का भी यही हाल.
Today the man's destiny is the same.
एटम बम बना के रखे हुए हैं बुद्धि के पराकाष्ठा दिखाने के लिए.
He has prepared atom bombs to show the summit of the capacity of the intellect.
बाप कहते हैं ये तामसी बुद्धि हो गए हैं.
Father says they have become of a vicious intellect.
क्या?
What?
बुद्धि भी सतो प्रधान होती है सतयुग में, संगम युग में.
इवन द इंटेलेक्ट बिकम्स प्योर इन द गोल्डन एज एंड इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
संगम युग में बुद्धि समो प्रधान भी बनती.
इन द कॉन्फ्लुएंस एज द इंटेलेक्ट बिकम्स इम्प्योर एज वेल.
क्योंकि माया वायलोरा डालती है.
बिकॉज माया दैट इज इल्यूजन इंटरप्ट.
जब माया वायलोरा डालती है तो बुद्धि तमो प्रधान बनती है.
वेन माया इंटरप्ट देन द इंटेलेक्ट बिकम्स विशियस.
और बाप जब अपनी ओर खींचते हैं तो बुद्धि सतो प्रधान बनती है.
एंड व्हेन फादर पुल्स ऑन टू हिज साइड द इंटेलेक्ट बिकम्स प्योर.
ये रस्सा कसी हो रही है.
देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन.
किसकी?
हुज?
माया की और राम की.
मायास एंड राम्स.
एक तरफ रावण और दूसरी तरफ राम संप्रदाय.
ऑन द वन साइड रावण एंड ऑन द अदर साइड राम्स कम्युनिटी.
दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं.
Both of them are pulling towards their own side.
Ram sampradaya rasse ko apni pala mein le jana chahte.
The Rams community wants to take the rope on their side.
Kya satyug ki nayi duniya mein apni pala mein le jayenge log.
That we will take the people to the new world of golden age.
Aur Ravan sampradaya? Ravan sampradaya us rasse ko khinch karke.
And the Ravans community pulls that rope to their side.
Kehta hai ki hum to is duniya se jaane wale nahi hai.
Saying that we are not going to leave this world.
हमें तो रावण की दुनिया में ही ले जाना है, रुलाने वालों की दुनिया में ले जाना है.
We want to take you to the Ravan's world only, into the world of those who cause one to weep.
रावण का नाम ही है रावण, रुलाने वाला.
Ravan's name is only Ravan, the one who makes you cry.
बाप है हंसाने वाला, रावण है रुलाने वाला.
Father is the one who makes you laugh, Ravan is the one who makes you cry.
क्योंकि रावण को अनेक सिर हैं, अनेक सिर माने अनेक मत है.
बिकॉज रावण हैज मेनी हेड्स. मेनी हेड्स मीन्स मेनी डायरेक्शंस.
जब राम रावण की लड़ाई दिखाते हैं रामलीला में.
व्हेन एट राम लीला दे शो द वॉर ऑफ राम एंड रावण.
तो राम को एक सर दिखाते हैं और रावण को अनेक सर दिखाते हैं.
राम इज शोन विद वन हेड एंड रावण विद मेनी हेड्स.
क्या मतलब हुआ?
What does it mean?
कि रावण अनेक मतें देता है.
That Ravan gives many mats or directions.
और बाप एक मत देता है.
And father gives you only one direction.
जैसे कोई दुकान होती है, अच्छा दुकानदार होगा तो कहेगा एकदम.
Just like in any shop, if he is a good shopkeeper, he says only one price.
तख्ती लिख करके टांग देते हैं, एकदम, दूसरी बात नहीं. लेना हो तो लो, न लेना हो तो चले जाओ.
He writes and hangs it up on his shop. Fixed price, no bargaining. If you want, you can take. Otherwise, you can go.
ऐसे ही बाप कहते हैं कि मैं एक ही हूँ, और एक ही बात बताता हूं, दो दो बातें नहीं करता, द्वैत नहीं फैलाता।
In the same manner, Father says that I am only one and I say only one thing. I do not say two things. I do not spread dualism.
मैं अवसरवादी नहीं हूँ.
I am not an opportunist.
अवसरवादी मनुष्य हो सकते हैं. जैसे आज के नेता हैं.
Man may be an opportunist, just like the present day politicians.
आज एक पार्टी में कल देखते हैं दूसरी पार्टी विजयी हो रही है तो दूसरी पार्टी में खिसक जाते हैं.
Today they are in one party. Tomorrow when they see that another party is winning, they slip out into that winning party.
बाप कहते हैं मैं अवसरवादी नहीं हूँ.
Father says I am not an opportunist.
जहाँ देखी तवा बारात वहीं बिताई सारी रात, ऐसा नहीं हूँ.
जहाँ देखी तवा बारात वहाँ बिताई सारी रात, a proverb which means wherever one sees the marriage rituals, they stay the whole night there. I am not like that.
मैं तो गरीब निवाज हूँ, मैं गरीबों के पीछे पीछे जाता हूँ.
आई एम द सपोर्टर ऑफ द पुअर, आई गो बिहाइंड द पुअर.
और वो गुरु लोग,
एंड दोस गुरुज
जो रईस होते हैं, साहूकार होते हैं, उनको आगे रखते.
दे कीप द रिच एंड प्रॉस्परस पीपल इन द फ्रंट.
कौन सी दुनिया के
गुरुज ऑफ विच वर्ल्ड?
इसी ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात हो रही है.
द टॉक इज ऑफ दिस ब्राह्मण फैमिली ओनली.
ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हैं, साधु संत महात्मा है.
इवन विद इन द ब्राह्मण वर्ल्ड देर आर सच सेंट्स, सेजेस एंड महात्मास और ग्रेट सोल्स
जो पैसे वालों को बहुत महत्व देते हैं और गरीबों को धक्का दे देते हैं.
हु गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड ड्राइव अवे द पुअर.
गरीबों की कन्या सरेंडर नहीं हो सकती उस ईश्वरीय सेवा के कार्य में. नाम कहते हैं ईश्वरीय सेवा.
The daughters of the poor cannot be surrendered in that godly service. For name's sake, it is named godly service.
और जो लाखों अर्पण कर सकते हैं, तो उन कन्याओं को सरेंडर कर लेते हैं.
And the one who could contribute lakhs, that is, hundred thousands of rupees, they let such daughters be surrendered.
अरे, भक्ति मार्ग में भी वो गवर्नमेंट भी कहती है कि दहेज देना और लेना बहुत बड़ा अपराध है.
Hey, even in Bhakti Marg, that government also says that taking and giving dowry is a very big offense.
Oh, भ्रष्टाचारी government है. और यहाँ नाम धराते हैं ईश्वरीय government.
That government is corrupted, and here it is said for namesake a godly government.
और काम क्या करते हैं? दहेज लेने का. अरे.
And what work do they do of taking dowry?
ईश्वरीय सेवा में पैसे कितनी दरकार ही नहीं है.
Hey, there is no need of much money in this godly service.
बाप तो कहते हैं तुम्हारे पास एक कमरा है, उस कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो.
Father says, if you have one room, you open a Gita Pathshala in that itself.
लिखो दो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी.
Right, spiritual university.
एक कमरे में ही सो जाओ, उसी में खाना बनाओ, उसी में सफाई करके क्लास लगाओ.
स्लीप इन दैट वन रूम इट सेल्फ, प्रिपेयर फूड इन दैट ओनली, क्लीन द सेम एंड कंडक्ट क्लासेस देयर.
ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय.
दिस इज योर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय.
इसमें एक भी पाई पैसे का खर्च नहीं है.
देर इज नॉट इवन द एक्सपेंस ऑफ अ पेनी इन्वॉल्व इन दिस.
तुम्हें कोई भीख मांगने की किसी से दरकार नहीं है, कोई चंदा लेने की दरकार नहीं है.
You need not beg anyone. No necessity for any charity.
वो गुरु लोग तो चंदे लेकर के भीख मांग मांग करके अपने मठ पंथ बनाते रहते हैं.
Those gurus beg, ask for charity and build their hermitages.
ऊंची ऊंची मेहलमानियां अटारियां बनाते जाएंगे.
They go on constructing big buildings, that is mansions and palaces.
सरकारी रजिस्ट्रेशन के कागजों में अपने नाम डलवाते जाते हैं.
They enroll their names in the government registrars.
बाप कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए.
Father says, I do not require anything.
मैं परमधाम से आया हूँ, परमधाम वापस ले जाऊंगा. ये मेहलमानियां अटारियां मुझे नहीं चाहिए.
I have come from Paramdham, the supreme abode, and I will take back all to Paramdham. I don't require these palaces and mansions.
हाँ, इतना कहते हैं कि जब विनाश होगा.
Yes, but he says this much, that at the time of destruction,
तो तुम बच्चे माउंट आबू जो तपस्या भूमि है उसमें आकर के इकट्ठे हो जाएंगे.
you children come and gather at Mount Abu, the land of penance.
मैं तुम बच्चों को इकट्ठा करूंगा.
I will collect you children.
लेकिन जो आत्मिक स्थिति में टिके हुए बच्चे होंगे उनको इकट्ठा करूंगा.
But only those children who have attained the soul conscious state of mind.
दे अभिमानी सांधे होंगे तो वो उस संगठन में नहीं आ पाएंगे.
The body conscious bulls will not be able to come into that gathering.
इसलिए बोला है ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके.
That is why it is said that this fort of Pandavas will become such a strong one in which not even one vicious person could enter.
कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी ऐसे उस संगठन में नहीं जा सकेंगे.
The lustful, the angry, the greedy, the one with attachment and the egoistic, such persons cannot enter in it.
वो आबू अब्बा का असली घर होगा.
That will be the real house of Abu Abba.
उस समय उसको कहेंगे महामधुबन.
At that time, it would be called as Mahamadhuban, the great Madhuban.
क्या?
What?
अभी तो तुम बच्चों के हैं छोटे छोटे मिनी मधुबन.
Now you children have very small mini Madhubans.
बोला हुआ है, आदेश दिया हुआ है क्या कि जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवे.
It is said and ordered. What? बाप दादा would come wherever a mini Madhuban is constructed.
क्या?
What?
गीता पाठशाला को भी मधुबन का रूप दे सकते हैं.
You can give the Gita Pathshalas also a shape of Madhuban.
मधुबन का नक्शा बनाओ.
Make a model of Madhuban.
जैसे मिनी मधुबन में बाप ने नक्शे बना दिए कि ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसा ही नक्शा बनाओ.
Just like father has designed the mini Madhubans that you should live like this, eat like this, stay like this, design it in the same manner.
तो मिनी मधुबन का नक्शा बना देंगे तो बाप दादा जरूर आवेंगे.
So if you design it like mini Madhuban, बाप दादा would definitely come.
लेकिन ये तो छोटे छोटे स्थान हैं, ये सिर्फ सेवा के लिए हैं.
But these are small places. These are only for the sake of service.
सदा काल के लिए नहीं.
Not for always.
आखिरी जब सृष्टि का विनाश होगा.
When the final destruction of the world occurs.
तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा.
Then the people of Madhuban will have to leave the Madhubans.
गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी.
The people of Gita Pathshalas will have to leave Gita Pathshalas.
ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा.
The people of ज्ञान सरोवर will have to leave ज्ञान सरोवर.
तो मेरे सच्चे बच्चे होंगे वो मेरे पास आकर के रहेंगे.
My truthful children will come and stay with me.
मैं अपने सब बच्चों को ले जाऊंगा.
I will take away all my children.
कौन से बच्चों को?
Which children?
आत्माभिमानी बच्चों.
The soul conscious children.
क्योंकि परमधाम में आत्मा ही जाती है बाप के साथ.
Because the souls alone go to Paramdham along with father.
सब आत्माओं को ले जाऊंगा. कितनी आत्माएं होंगी?
I will take all the souls. How many souls would be there?
ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्माएं कितनी होंगी?
How many souls would be stabilized in such a soul consciousness?
4.5 lakhs.
4.5 lakhs. That is 450,000.
4.5 lakh बच्चों का एक ही घर होगा. इतना बड़ा परिवार प्रैक्टिकल में दुनिया में और कोई होता नहीं.
There would be only one house of 450,000 souls. Another family as big as this practically would never exist in this world at all.
एक ही खाना, एक ही पहनना, एक ही बाप, एक ही माँ.
Oneness in eating, oneness in wearing, only one father, only one mother.
शांति धाम का नजारा इस सृष्टि पर साकार में देखेंगे.
You will see the scene of शांति धाम in this world practically.
इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे.
That is why it is said in the Murlis that you children will shift the Paramdham to this world.
तो ये सब करने के लिए बैग एंड बैगेज समेटना शुरू किया है.
So, in order to do all these things, have you started winding up your bag and baggage?
ये धंधा दोरी बढ़ाते चले जा रहे हो.
or are you still extending your businesses?
बाप ने तो बता दिया है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ही छोटी धंधे के.
Father has already said that there is loss in every business except one godly business.
अब ऐसा समय आने वाला है.
Now such a time is going to come.
अभी भी ये समय चल रहा है.
Now also such a time is going on.
सब कल कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं.
All the factories are being closed.
कोई धंधा सरकार पनपने नहीं दे रही है.
The government is not letting any business flourish.
आखिरी सब खलास हो जाएंगे.
Ultimately, everything will come to an end.
एक ही धंधा संसार में पनपेगा. ईश्वरीय धंधा.
Only one business will flourish in the world, the godly business.
लेकिन जो इस धंधे में एक्सपर्ट होंगे.
But those who are expert in this business.
वो आसमान में 9 लाख सितारों की तरह दुनिया में चमकेंगे.
Will shine in the world like the 9 lakh stars in the sky.
जो ईश्वरीय ज्ञान में एक्सपर्ट नहीं होंगे. उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा.
Those who are not expert in the godly knowledge will have to leave their bodies.
सितारे की तरह ऊंची स्टेज में नहीं चमक सकेंगे.
They will not be able to shine like the stars at a higher stage.
अभी बाप कहते हैं.
Now the father says.
मैं आया हुआ हूँ.
I have come.
9 लाख सितारों की स्टेज में आ सकते हो.
You can come into the stage of the 9 lakh stars.
उससे भी ऊंची अच्छी पढ़ाई पढ़ो तो 4.5 लाख जन्म देने वाले जन्मदाताओं की बुद्धि स्टेज में आ सकते हो जो राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने वाले होंगे.
इफ यू स्टडी हायर देन दैट यू कैन कम इन टू द स्टेज ऑफ 4 to 5 lakh पेरेंटल सोल्स हु आर गोइंग टू गिव बर्थ टू द ग्रेट सोल्स लाइक राधा कृष्ण.
और उससे अच्छी पढ़ाई पढ़ो.
इफ यू स्टडी इवन हायर देन दैट
तो जो रुद्र यज्ञ रचे जाते हैं उनमें लाख लाख शालिग्राम बनाए जाते हैं जिनकी पूजा होती है शिव के साथ.
देन व्हेन द यज्ञस ऑफ रुद्र आर अरेंज्ड लैक्स ऑफ शालिग्राम्स दैट इज ब्लैक राउंड स्टोन्स दैट आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन द पाथ ऑफ डिवोशन आर मेड विच आर वर्शिप्ड अलॉन्ग विद शिव.
ऐसे लाख श्रेष्ठ शालिग्रामों की लिस्ट में आ सकते हो.
You could come in such a lakh great saligrams.
और भी अच्छी पढ़ाई पढ़ो.
If you study still further,
तो 16,108 गोप गोपियों का जो गायन है भागवत में.
Then the 16,108 गोप गोपीज that is praised in the Bhagavat.
जो माला है 16,108 की.
The garland of the 16,108.
माला माने संगठन.
Garland means a gathering.
उस श्रेष्ठ संगठन में भी आ सकते
हैं. यू कुड ऑल्सो कम इन दैट ग्रेट गैदरिंग.
वो है राजघराना. जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेने वाले बच्चे हैं.
इट इज द रॉयल फैमिली. दे आर द चिल्ड्रन हु विल टेक बर्थ इन रॉयल फैमिली ओवर मेनी बर्थ्स.
प्रजा में जाने वाले कम होंगे. ऐसे नहीं कि उनमें प्रजा में जाने वाले होंगे ही नहीं.
देयर विल बी फ्यू हु विल गो इन टू द कैटेगरी ऑफ द सब्जेक्ट्स. It is not that there will not be anyone who will go into the subjects in it.
कोई कोई ऐसे होंगे जो जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेते रहेंगे.
Some will be such that they will take birth in royal family only over many births.
वो 16,000 की लिस्ट अभी तैयार होती है डिक्लेयर होने वाली है.
That list of 16,108 is getting ready now and is about to be declared.
जैसे स्कूल होता है कॉलेज होता है.
Just like in the schools and colleges.
तो उसमें पहले से डिक्लेयर किया जाता है.
दे डिक्लेयर अर्लियर इटसेल्फ इन इट
कि फर्स्ट क्लास पास होने वाले इतने होंगे सेकंड क्लास पास होने वाले इतने होंगे और पास विद ऑनर इतने होंगे.
दैट दिस मेनी विल बी पास इन फर्स्ट क्लास दिस मेनी विल बी पास इन सेकंड क्लास एंड दिस मेनी विल बी पास विद ऑनर.
ये भी बाप का विद्यालय है ईश्वरीय विश्वविद्यालय.
दिस इज ऑल्सो अ विद्यालय स्कूल ऑफ द फादर अ गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी.
इसमें ऊंचे से ऊंचे पद हैं 8.
इन दिस द हाइएस्ट सीट्स आर 8.
जो नवग्रहों के रूप में आज भी पूजन किए जाते हैं.
द वंस हु आर बीइंग वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ 9 प्लैनेट्स इवन टुडे.
उसके बाद है 108.
आफ्टर विच इज 108.
जो माला दुनिया के हर धर्म में स्मरण की जाती है. कोई धर्म ऐसा नहीं है नास्तिक धर्म को छोड़ के जहाँ माला रूपी संगठन को स्मरण न किया जाता हो.
the garland that is chanted by all the religions of the world. There is no such religion except communists, where the garland form gathering is not chanted. Next to that are the 1000 arms of Brahma, the helper children. After which are the 16,000.
अब जो चाहो सो पद ले लो.
Now take up any seat you want.
न चाहो तो वो डॉगली पढ़ाई पढ़ते रहो.
If you do not want, then keep reading that doggly studies.
मैं तो आया हूँ पढ़ाई पढ़ाने के लिए.
Anyways, I have come to teach.
मेरे को गार्ड कहा जाता है तो गार्ड तो जरूर गार्डली पढ़ाई पढ़ा लेगा.
I am being called as God, so God will definitely teach godly studies.
दुनिया में जो पढ़ाई जाती है पढ़ाई उसका नाम बाप देते हैं डॉगली पढ़ाई.
The studies that is taught in the world is named by father as dogly studies.
ओम शांति.
ओम शांति.